हेलो, मैं हूँ कहानी वाली कुड़ी। स्वकथा में सुनिए अमृता प्रीतम की आत्मकथा रसीदी टिकट का छठा भाग। नफरत का एक दायरा। बात ये भी छोटी सी है पर बहुत बड़े नफरत के दायरे में घिरे हुए। ये भी मेरी साहित्यिक जिंदगी के आरंभिक दिनों की बात है। लाहौर के पंजाबी के एक कवि जिनसे कभी भेंट नहीं हुई थी। पता लगता रहता था कि वो मेरे विरुद्ध बहुत बोलते हैं। मैंने उन्हें कभी देखा नहीं था, इसलिए चकित हुआ करती थी कि उन्हें मेरी जात से कब की और किस बात की दुश्मनी है। फिर देश के विभाजन से कुछ समय पहले की बात है कि एक बार मुझे कुछ बुखार हो गया और एक साप्ताहिक के संपादक हाल पूछने के लिए आए। उनके साथ एक कोई और व्यक्ति भी था जिसे मैंने कभी पहले नहीं देखा था। उन्होंने नाम बताकर परिचय कराया तो मैं चौंक सी गई। ये वही थे जिन्हें मेरे अस्तित्व से ही नफरत थी। हैरान थी कि आज मेरा हाल पूछने क्यों आए। 2-3 दिन बाद उसी साप्ताहिक में उनकी एक कविता पढ़ी जिसके नीचे वही तारीख पड़ी हुई थी जिस तारीख को वो मिलने के लिए आए थे। और ये कविता अजीब और गरीब प्रेम की कविता थी। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे नफरत के लिए कोई कारण नहीं था, उसी तरह उस जज्बे के लिए भी कोई कारण नहीं था। और फिर वो कुछ एक बार घर आए। हैरान होकर पूछा कि ये अचानक मेहरबानी क्यों, पर कुछ भी पकड़ नहीं आया। मैं मानती हूँ कि उनकी किसी बात में कोई शोखी नहीं थी, लेकिन ये कठोरता सी जरूर थी कि सब लोग घटिया है। मैं किसी से ना मिला करूं, यहां तक कि लाहौर रेडियो के लिए जब मैं साहित्य की समालोचना लिखा करती थी वो आग्रह किया करते थे कि अमुक का नाम मत लिखना, अमुक की प्रशंसा मत करना, अमुक की पुस्तक का उल्लेख मत करना। इस साहित्यिक परिचय से जब मेरी सांस घुटने लगी तो मैं खींच उठी। पर ये तलखी अभी जबान पर आई ही थी कि देश का बंटवारा हो गया और मैं उनके परिचय से मुक्त हो गई। फिर कुछ वर्ष बाद सुना कि उनके विचार में हिंदुस्तान का बंटवारा इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने उनकी दोस्ती नहीं चाही, और उनके विचार में हजारों मासूम लोगों का कत्ल भी इसीलिए हुआ। खैर, हिंदुस्तान के विभाजन का और मासूम लोगों के कत्ल का ये जो मुझ पर इल्ज़ाम था, इससे कोई मनोविज्ञान का विशेषज्ञ भले ही समझ सके, मैं नहीं समझ सकती। और देखने में आया कि अब वो फिर मेरे विरुद्ध बोलते थे और मेरे विरुद्ध कविताएं लिखते थे। ये नफरत मानो एक गोल दायरा थी जिसका आखिरी सिरा फिर पहले सिरे से जुड़ना ही था।
1947। हमारे देश की तकसीम के वक्त जो हुआ, कल्पना में भी उस जैसा खूनी कांड नहीं आ सकता था। दुखों की कहानियां कह कह कर लोग थक गए थे, पर ये कहानियां उम्र से पहले खत्म होने वाली नहीं थी। मैंने लाशें देखी थी, लाशों जैसे लोग देखे थे, और जब लाहौर से आकर देहरादून में पनाह ली तब नौकरी की और दिल्ली में रहने के लिए जगह की तलाश में दिल्ली आई, और जब वापसी का सफर कर रही थी तो चलती हुई गाड़ी में नींद आंखों के पास नहीं भटक रही थी। गाड़ी के बाहर घोर अंधेरा समय के इतिहास के समान था। हवा इस तरह साए साए कर रही थी जैसे इतिहास के पहलू में बैठकर रो रही हूं। बाहर ऊंचे ऊंचे पेड़ दुखों की तरह उगे हुए थे। कई जगह पेड़ नहीं होते थे, केवल एक वीरानी होती थी, और इस वीरानी के टीले ऐसे प्रतीत होते थे जैसे टीले नहीं खबरें हों। वारिस शाह की पंक्तियां मेरे जहन में घूम रही थी, पला मोए तो पिछड़े कौन मिले। और मुझे लगा वारिस शाह कितना बड़ा कवि था वो हीर के दुख को गा सका। आज पंजाब की एक बेटी नहीं, लाखों बेटियां रो रही हैं। आज इनके दुख को कौन गाएगा? और मुझे वारिस शाह के सिवाय और कोई ऐसा नहीं लगा जिसे संबोधित करके मैं ये बात कहती। उस रात चलती हुई गाड़ी में हिलते और कांपते कलम से एक कविता लिखी। अज आखां वारिस शाह नू किते कबरां विच्चों बोल, ते अज किताबे इश्क दा कोई अगला वरका खोल। एक रोई सी ते पंजाब दी तू लिख लिख मारे बैण, अज लखां धीआं रोंदियां तैनू वारिस शाह नू कहण। उठ दर्दमंदां दा दर्दिया, उठ तक अपना पंजाब, अज बेले लाशां बिछियां ते लहू दी भरी चनाब। कुछ समय बाद ये कविता छपी, पाकिस्तान भी पहुंची। और कुछ देर बाद जब पाकिस्तान में फैज़ अहमद फैज़ की किताब छपी, उसकी प्रस्तावना में अहमद नदीम कासमी ने लिखा। ये कविता उन्होंने तब पढ़ी थी जब वो जेल में थे। जेल से बाहर आकर भी देखा कि लोग इस कविता को जेबों में रखते हैं, निकाल कर पढ़ते हैं और रोते हैं। फिर 1972 में लंदन गई तो वहां बीबीसी के एक कमरे में किसी ने पाकिस्तान की शायरा साहब गजलबाश से मुलाकात करवाई। साहब के पहले शब्द थे, अरे ये तो अमृता है जिन्होंने वो कविता लिखी थी वारिस शाह, इनसे तो गले मिलेंगे। वहां ही एक शाम सुरिंदर कोछड़ के घर पर महफिल थी जहां साहब गजलबाश थे और पाकिस्तान के और साहित्यकार थे, साकी फारूकी, फहमीदा रियाज और उदास नस्लें के लेखक अब्दुल्ला हुसैन, और साथ ही पाकिस्तान के मशहूर गविये थे नजाकत अली, सलामत अली। रात कविताओं से भरी हुई थी। जब नजाकत अली से कुछ गाने के लिए कहा गया तो उनके पास साज नहीं थे, कहने लगे, हमने आज तक बिना साज के कभी नहीं गाया। पर साथ ही बोले, जिसने वारिस शाह कविता लिखी है आज उसके लिए बिना साज के भी गाएंगे। और वो रात नजाकत अली की सुरीली आवाज में भीग गई। अब 1975 में जब पाकिस्तान के मुल्तान शहर से एक साहित्यिक मशकूर साबरी उर्स के मौके पर दिल्ली आए तो उन्होंने बताया कि पिछले कई बरसों से वो मुल्तान में जश्न वारिस शाह मनाते हैं, जिसमें लोक गीतों का, लोक नृत्य का और लोक कला का प्रदर्शन भी होता है और मुशायरा भी। और ये जश्न मेरी उस नज्म वारिस शाह से शुरू किया जाता है। वो 100x80 फुट के स्टेज पर सेट लगाते हैं जहां रांझे का वन भी होता है, हीर का मुकाम भी। ये नज्म करीब 25 मिनट गाई जाती है। स्टेज पर खूब अंधेरा करके एक रोशनी से धुआं दिखाते हैं, फिर वारिस शाह की कब्र में से उठता है। पाकिस्तान के मशहूर गवैये एक एक कड़ी गाते हैं और उन्हीं के मुताबिक स्टेज के दृश्य बदलते जाते हैं। और जब नज्म का आखिरी हिस्सा आता है तो ऐसी गूंज पैदा करते हैं जैसे सारी कायनात में मोहब्बत और खुलूस जाग पड़ा हो। पर ये कविता थी, जब लिखी थी तब अपने पंजाब में कई पत्र पत्रिकाएं मेरे लिए तोहमतों से भर गई थी। सिखों को ये आपत्ति थी कि ये कविता वारिस शाह को संबोधित करके क्यों लिखी, गुरु नानक को संबोधन करके लिखनी चाहिए थी। और कम्युनिस्ट कहते थे कि मैंने लेनिन या स्टालिन को संबोधन करके क्यों नहीं लिखी। यहां तक कि इस कविता के विरुद्ध कई कविताएं लिखी गईं। ये था अमृता प्रीतम की आत्मकथा रसीदी टिकट का छठा भाग, प्रस्तुति सुखनंदन बिद्रा की थी।